ये आकाशवाणी है। अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। लोकसभा ने कल रात विधेयक पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। इसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इससे संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हितधारकों के साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद विधेयक लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ का लाभ केवल मुस्लिम को ही मिल सकता है और कोई गैर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाने के लिए इसमें मुसलमानों के सभी संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय मंत्री और नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि विधेयक राष्ट्रहित में है। कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि ये विधेयक भ्रामक है और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से लाया गया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के तिरुचि शिवा ने कहा कि विधेयक में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने विधेयक पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने विधेयक लाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई दी। और आइए अब चलते हैं राज्यसभा में, जहां वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा अभी जारी है।
होल्डर पर सेम प्रॉपर्टी कैसे गई? और मैं यहां आज मीटिंग के लिए गई थी, अर्बन अफेयर्स की हमारी मीटिंग थी। एक भाई साहब मुझे मिले जिनका नाम था देशमुख, महाराष्ट्र से आए थे। उन्होंने मुझे एडिशनली जानकारी दी, उनका गांव है शिरसाड़ा परळी वैजनाथ, उनका नाम है देशमुख। उन्होंने कहा कि उनके 16 एकड़ प्रॉपर्टी थी, उनके बाजू में एक मुस्लिम समुदाय की वो भी 16 एकड़ प्रॉपर्टी थी। दोनों प्रॉपर्टी मिलाकर अचानक से वक्फ जाहिर कर दी, अचानक से, कैसे हो सकता है? और दोनों ने, मतलब देशमुख जी भी गए और मुसलमान जो भाई थे वो भी गए।
लोकसभा ने तटीय नौवहन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारतीय समुद्री सीमा के भीतर व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करना है। विधेयक में तटीय नौवहन के विनियमन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने, तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। केंद्रीय पत्तन पोत और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर बल दिया कि परिवहन के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। श्री सोनोवाल ने कहा कि यह क्षेत्र देश का सबसे बड़ा परिवाहक है और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। भारत और थाईलैंड ने आज सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 6 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंतोंग गर्तान शिनावात्रा के बीच बैंकॉक में द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने पूर्वोत्तर भारत और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत आसियान एकता और आसियान एकजुटता का पूरा समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत का समर्थन करते हैं। थाईलैंड सरकार ने श्री मोदी की यात्रा के अवसर पर 18वीं शताब्दी के रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया। श्री मोदी को थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने पाली में बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ तिपट का एक विशेष संस्करण भी भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को थाईलैंड भेजने की पेशकश की। भारत अमेरिका द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्कों के प्रभावों की सावधानी पूर्वक जांच कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि विभाग भारतीय उद्योग और निर्यातकों सहित सभी हितधारकों से बातचीत कर शुल्कों के बारे में प्रतिक्रिया ले रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 201 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में हैदराबाद की टीम ने 7वें ओवर में 3 विकेट पर 44 रन बना लिए हैं।